कह दिया है कि हम जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के साथ की जो मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट जो दवाई बना रहा है इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, उसकी कीमत सिर्फ $3 होगी. $3, विच मीन्स कि हम गवर्नमेंट को देंगे 220 रुपए इंडियन की. अब इंडियन गवर्नमेंट कितने की उसको करते हैं, जो है मार्केट करते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है. तो यानी 200 रुपए क्या चीज है माजिद भाई, आप खुद सोचें. $3 की सिर्फ जो है वो कह रहे हैं इस तरह से है. और ये कह रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड 50 मिलियन डोजेस. आप सोचें जरा, वो कह रहे हैं हम इमीडिएटली.
मगर उन्होंने इंडिया ने ये भी कहा है कि हम फर्स्ट फेज में 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करेंगे.
जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी हाँ जी. तो ये दोनों अब आ गई है ना, तो दोनों ऐसे करेंगे और ये करते जाएंगे वो जो है मैन्युफैक्चर, क्योंकि फैसिलिटी है इनके पास. पाकिस्तान के अंदर जी एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने अब कहा है कि जनवरी 18th को क्लासेस 9 और 10th जो है उनके स्टूडेंट्स वापस जाएंगे स्कूलों में, और प्राइमरी क्लासेस जो है टू 8th ग्रेड जो है वो अब जाएंगे जनवरी 25th को वापस, और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है वो रिज्यूम करेंगी फरवरी 1 से. लोगों ने बड़ा कंसर्न शो किया है, लेकिन शफकत महमूद साहब ने कहा है जी हमारे पास अभी ऐसा कोई डेटा नहीं आया है कि जिसमें हमें पता चले कि स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से जो है ये COVID-19 फैल सकता है, तो इसलिए हमने जो है ये डिसीजन लिया है. बलूचिस्तान के अंदर जो मच का एरिया है वहां पे काफी, जैसे मैंने आपको हेडलाइंस में बताया था, अफसोस की वो खबर थी. 11 कोल माइनर्स जो हैं, एक जो है स्प्लिंटर ग्रुप जो है वो टेररिस्टों का, उन्होंने उनको पहले पकड़ा, उनको गोल्ड माइन से लेकर गए ऊपर उधर पहाड़ पे, वहां पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, उसमें ये सारे 11 लोग मर गए. इसके अलावा 4 लोग बहुत सीरियसली जो है वहां पे जख्मी हो गए थे. फिर जाहिर है वहां पे पुलिस को बुलाया गया तो उन्होंने जो है इनको हॉस्पिटल में सबको शिफ्ट किया है. अब वहां पे जो है बहुत ज्यादा जंगामा रहा. उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि भई आप जो है इस चीज के बारे में कुछ प्रोब करें. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसको बहुत ही कावर्डली एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है, और उन्होंने सारी जो अथॉरिटीज उनको कहा है कि फौरन आप पता लगाएं कि ये टेररिज्म का एक्ट जो है ये किसने किया, और उन सबको पनिश करने की जरूरत है. इस सिलसिले में आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिपोर्ट आई थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की. अब हमारे पास टाइम नहीं है तो वो मैं आपके साथ कर नहीं सकती, वरना वो रिपोर्ट में आपको बताती कैसे वो जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाले हैं, बिकॉज दे आर ऑल PhDs. नो लेस पर्सन जिसने मास्टर्स कर लिया और जी फर्स्ट आ गया, नहीं, ऑल PhDs, दे आर पार्ट ऑफ अमेरिकन थिंक टैंक वो सारे लोग जो हैं. तो वो उन लोगों की एक रिपोर्ट आई है कि हाउ टेररिस्ट माइंड वर्क्स, उन लोगों के दिमाग में क्या आता है और कैसे वो चलता है. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टडी इन द साइकी ऑफ अ टेररिस्ट. तो वो कभी फिर टाइम होगा तो वो मैं आपके साथ करूंगी, अब टाइम नहीं है हमारे पास. तो अमेजिंग अमेजिंग डिटेल्स जो उन्होंने दी हैं, इट्स रियली एन आई ओपनर. और जनाब वी आर राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज. मैंने आपको बताया था हमारी कंगना आंटी वापस आ गई हैं और वो जो है फिर से खींच रही हैं मासूम दिलजीत दोसांझ को, और वो कह रही हैं कि तुम झूठ बोलते हो, तुम जो है हर वक्त फार्मर्स से लड़ते हो और जो के लिए लड़ते हो जो कि अगेंस्ट हैं गवर्नमेंट के, और तुम जो है तुम्हारे हजार झूठ जो है वो छुपा नहीं सकते सच्चाई को, और तुम्हें लगता है कि पंजाब में लोग मुझे बड़ा हेट करते हैं. मुझे कोई हेट नहीं करते, लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम जो है यू नीड टू थिंक बिग एंड यू नीड टू ड्रीम बिग, और कोई पंजाब वाले मेरे अगेंस्ट नहीं है. अच्छा जी, उसके जवाब में दिलजीत दोसांझ साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी आप जितनी अच्छी बातें करती हैं ना, मेरा दिल चाहता है मैं आपको अपना जो है PR जो है ना मैनेजर बना लूं क्योंकि आप बातें बड़ी अच्छी करती हैं और बड़ा घुमाने में आप बड़ी तेज हैं. तो वो कह रहे हैं कि ये जो कर रही है ना, ये जो आप तेल डाल रही हैं ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट के अंदर, ये सही बात नहीं है, और आपका पता चल गया है कि आप किस तरह की हैं और पंजाब के लोग अब आपसे प्यार नहीं करते हैं.
मैं ना मानूं.
हाँ, वो कहती है मैं ना मानूं. हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि ये जितने भी आपने एलिगेशन पंजाब और पंजाबियों के ऊपर लगाए हैं, क्योंकि वो तो कह रही है ना कि ये सारे लोग देशभक्त नहीं है. आपके लिए एक और लफ्ज है
देशभक्त.
हाँ, वो कह रहे हैं ये देशभक्त नहीं है, ये देश के खिलाफ है. तो वो कह रहे हैं कि ये देश के खिलाफ शिलाफ नहीं है. एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब कुछ लोगों ने कहा था ये टेररिस्ट है, उन्होंने कहा जी ये फार्मर्स हैं ये टेररिस्ट नहीं है.
सही.
तो वो कंगना मैडम उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, फिर वो उसका मासूम जो है जवाब देते हैं. अच्छा जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में सेकंड टेस्ट शुरू हो गया है, और उनके जो कैप्टन है केन विलियमसन, उन्होंने फिर से एक दफा तूफानी किस्म की वो खेली है, इनिंग्स खेली है सेकंड टेस्ट में, और उन्होंने अपने जो है बनाए हैं. यहां पे ये खेल रहे थे, असल में जो पाकिस्तान की जो हालत थी ना वो इतनी भी पतली नहीं थी, और उन्होंने क्या किया था डे टू पे कि उन्होंने काफी जल्दी जल्दी न्यूजीलैंड की 71 पे 3 विकेट्स भी ले ली थी. लेकिन केन विलियमसन जो है अलॉन्ग विद हेनरी निकल्स जो है वो अटक गए वहां. वहां पे, वो जब वहां पे हो गए तो फिर इन्होंने जो है विलियमसन जो है उसने 112 रन बनाए और निकोल्स ने 89 बनाए, तो इनका पार्टनरशिप जो है उसने फिर जनाब स्टैंड दिया इनको. तो मुझे लग रहा है कि ये सेकंड टेस्ट भी जो है ना ये अब गई भैंस पानी.
डोंट गिव अप, नो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप जी, डोंट गिव अप.
अच्छा जी, अच्छा,
डोंट गिव अप.
तो ये थी हमारी आज की खबरें.
बहुत बहुत शुक्रिया शादिया जी. एंड सामईन नाजरीन, ये थी आज की खबरें और इंशाल्लाह ताला कल 3:30 बजे फिर आपको झलकियाँ सुनवाएंगे और मगरिब की नमाज के बाद फिर शादिया जी आएंगी और आके पूरी ताज़ा तरीन खबरें अब से लेके कल तक की ताज़ा तरीन खबरें. अब मैं आपके लिए चलता हूँ कहाँ पर, जो हमारा रेगुलर प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ ले चलूँगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़ आपको. और चलते चलते एक गुजारिश के इल्तिजा जो हमेशा करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, कि अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें. हम आपके लिए दुआ होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें. ख़ास तौर से हमारे दोस्त, हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें. उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफ़र मुकम्मल करके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद कर, उन्हें जन्नत फ़िरदौस में अदा फ़रमाए. आमीन सुम्मा आमीन. बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात. उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह
हलाकतों पर दुख का इजहार करते हुए एफसी को हुक्म जारी किया है कि तमाम वसायल इस्तेमाल करते हुए कातलों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए. तहम हजारा बिरादरी इंसाफ होते हुए देखना चाहती है.
अगर हमारे मर्द हजरात या हमारे गवर्नमेंट के जो लोग अपना सौदाबाजी करके अपनी दुकानदारी सजा के अगर ये तदफीन के लिए राजी होते भी हैं, हम खवातीन इंशाल्लाह अपने इन चादरों के उस पे, अपने बीबी ज़ैनब के चादर के साए तले इंशाल्लाह हम अपने जवानों की मैयत को इस तरह दफनाने नहीं देंगे. वैसे ये कोई बात नहीं है, ये कोई फ़िरकावारियत की बात नहीं है, ये कोई मजहबी हवाले से कोई बात नहीं है. ये जो है दरअसल रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि तहफ़ फराम करें. और ये तहफ़ है कि आप सोते वक्त में कुछ लोग सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, उन्हें जाकर जो है उनका सर तन से जुदा कर देना.
मच और दराए बोलान में इससे पहले भी हजारा बरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है. इस इलाके का शुमार बलूचिस्तान के शोरशज़दा इलाकों में होता है. बाज़ इत्तला'आत के मुताबिक हाल ही में इस इलाके में ऑपरेशन भी किया गया था. समाजी राब्तों की वेबसाइट पर सवाल किया जा रहा है कि रियासती इदारों की मौजूदगी के बावजूद ये वाकया कैसे पेश आया. रियासवेल, बीबीसी न्यूज.
और इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से वाबस्ता तज़्ज़ियाकार आमिर राना. आमिर राना साहब, सरबीन में खुश आमदीद. सबसे पहले तो ये बताएं, दौलत इस्लामिया जो नामनेहाद दौलत इस्लामिया है उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, क्या इस इलाके में ये तंजीम इस कदर मुतहर्रिक है?
देखिए, काफ़ी अरसे से ये तंजीम मस्तूंग में और मच के इलाके में सरगर्म रही है. और अगर आपको याद हो तो चंद साल पहले जब चीनी सियाहों के अगवा का मसला दरपेश हुआ था तो जो सबसे बड़ा ऑपरेशन इस तंजीम के खिलाफ हुआ वो भी मस्तूंग के और इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर हुआ था. बहरहाल इसके आसार तो यहाँ पे हैं और इसकी कार्रवाइयाँ भी बहुत ही मखसूस रही हैं. और मजहबी जो आदाफ है इसके हमेशा से रहे हैं और खास तौर पे मसलक के रहे हैं. और क्वेटा में तो चर्चेस के ऊपर और हजारा बरादरी के ऊपर इसने खासे हमले इसके ऊपर किए. लेकिन इसके अलावा भी कई और यहाँ पे कुवतें हैं, फिरका वाराना कुवतें हैं, मजहबी कुवतें हैं जो हजारा बरादरी को निशाना बनाती रही हैं. तो अभी इसमें बाज़ाहिर तो जिम्मेदारी कबूल की गई है दाइश की तरफ से, लेकिन इसको मेरा ख्याल है कि बाकी जो गिरोह इस इलाके में मौजूद हैं उनके मुलविस होने के इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता.
अच्छा, जिस तरह इन अफराद को निशाना बनाया गया, ऐसा लगता है कि उनकी नकलो हरकत के बारे में भी उनको मालूमात थी, इस तरह के हसास इलाके में ये इंटेलिजेंस की नाकामी भी तो जाहिर करता है.
ये देखिए कि बहुत ही हसास इलाका है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये ऐसा भी कोई वीरान इलाका नहीं है कि जहाँ पे इतनी आसानी से ये ऑपरेशन हो और अगवा किया जाए और उनको हिला किया जाए। और जिस जगह के ऊपर ये वाकया हुआ वो शाहरा के ऊपर है और खासी आमदरफ्त वाला है और वहाँ पे खासी प्रेजेंस रहती है सिक्योरिटी फोर्सेज की। तो लगता है ऐसे ही है कि ये बहुत ही मनसूबा बंदी से ये प्लान किया गया था, इतनी आसानी से सिक्योरिटी फोर्सेज की मौजूदगी के अंदर ये वाकया नहीं हो सकता था, खासी मनसूबा बंदी इसके पीछे लगती है।
अच्छा आमिराना साहब, बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है क्या? कभी लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, फिर इस तरह के हमले होते हैं, कुछ अर्सा पहले वहाँ सिक्योरिटी दस्तों पर भी हमला हुआ था, इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल कैसी है?
देखिए दो तरह के खतरात हैं बलूचिस्तान में, एक तो वो जो सब नेशनल ग्रुप्स हैं जिन्हें इंसर्जेंस ग्रुप्स कहते हैं उनकी तरफ से, और वो हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा निशाना बनाते हैं और इस साल भी 2020 के अंदर भी सबसे ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया सिक्योरिटी फोर्सेस को, और दूसरे वो हैं जो मजहबी और नस्ली बुनियाद के ऊपर सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। तो उसके अंदर गिरोह हैं जो क्वेटा, इसके इर्द गिर्द कलात और मस्तूंग के इलाके के अंदर ज़्यादा सरगर्म में अमल रहते हैं। तो ये दो तरह के खतरे हैं, लेकिन अभी रियासत की जो तवज्जो हमेशा रहती है चूंकि नेशनल इंसर्जेंस की तरफ रहती है और ख़तरा भी उनकी तरफ से है भी, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो दूसरे जो अनासर हैं जो मजहबी और नस्ली बुनियादों के ऊपर तशद्दुद के अंदर शामिल हैं, उनकी तरफ से गालिबन तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि फोकस उनका दूसरी तरफ है जो बिल्कुल उनको बराह रास्त सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाती हैं कुवतें। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर एक बहुत ही एक बड़ी तब्दीली सोच में लाने की ज़रूरत है बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म के खतरात हैं उनको डील करने के लिए, और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर देखना पड़ेगा, खासतौर के ऊपर जो हज़ारा बरादरी के ऊपर और इन एरियाज़ के अंदर जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन इलाकों के अंदर कोई भी वाकया होना वो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी खबर बनती है और सीपैक के और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हवाले से भी बेहतर।
इस्लामाबाद से आमिराना साहब हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। यहां लंदन की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले नहीं किया जा सकता। जज ने जूलियन असांज की जहनी हालत के बारे में तशवीश के पेश नजर यह फैसला सुनाया है। जूलियन असांज पर अमेरिका में हजारों खुफिया फौजी दस्तावेजात मंजर आम पर लाने का इल्जाम है। असांज के हामी कहते हैं कि ये दस्तावेजात जंगी जरायम के शवाहिद थे। तफसील के साथ सलीम काजी।
जूलियन असांज ने विकीलीक्स का आगाज दुनिया भर में बदउनवानी और ताकत के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ एक जंग के तौर पर किया था। मसलन ये वीडियो जिसमें अमरीकी फौजियों को बगदाद में हेलीकॉप्टर से आम इराकी शहरियों पर गोलियां बरसाते देखा जा सकता है। अमरीकी फौज की तरफ से पर्दा डालने की तमाम कोशिशों के बावजूद असांज इस वीडियो को दुनिया के सामने ले आए थे। 2010 में असांज ने दुनिया भर के अखबारों को हजारों सफारती खतूत या केबल्स और फौजी कारकर्दगी की तफसीलात फराहम कीं, जिनमें मुतअद्दद अमरीकी खुफिया राज और एजेंट्स की तफसीलात शामिल थीं। इसके फौरन बाद स्वीडन ने असांज पर जिंसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए बैनुल अक्वामी वारंट जारी कर दिए। जब लंदन की हाई कोर्ट ने असांज को स्वीडन के हवाले करने का फैसला सुनाया तो उन्होंने जमानत की खिलाफ वर्जी करते हुए एक्वाडोर के सफारत खाने में सियासी पनाह ले ली थी।
अमरीका को चाहिए कि वो अब विकीलीक्स का पीछा छोड़ दे।
मैं 2014 में उनसे मिलने एक्वाडोर के सफारत खाने गया जिसका कुल रकबा एक बड़े फ्लैट जितना ही था।
मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन दूसरे लोग इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात में रह रहे हैं।
2016 के अमरीकी इंतखाबात से पहले विकीलीक्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी की खुफिया ईमेल्स शाया की जिससे हिलरी क्लिंटन को इंतखाबात में नुकसान पहुंचा और डोनाल्ड ट्रंप को शायद सदर बनने में फायदा भी हुआ। मुबैना तौर पर इस हैकिंग के जिम्मेदार रूसी एजेंट थे। असांज के खिलाफ स्वीडन का रेप वाला मुकदमा तो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन 2019 में एक्वाडोर ने बरतानवी पुलिस को असांज को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। उन्हें जमानत की खिलाफ वर्जी करने पर 50 हफ्ते की सजा सुनाई गई। تب سے ہی امریکی حکومت اسانج کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے کوشاں ہے۔ مختلف اخباروں کے مدیروں کا خیال ہے کہ یہ ذرائع ابلاغ کی آزادی پر حملہ ہے، لیکن ایک امریکی ماہر کہتی ہیں کہ اسانج کے خلاف اصل الزام حکومتی راز ہیک کرنا ہے۔
میرا خیال ہے کہ اسانج کے بارے میں وہ باہر آنا چاہیے جو سچ ہے، اور ان کے بارے میں بہت کچھ پھیلایا جا رہا ہے۔ وکی لیکس کیا ہے، اس بارے میں بات کرنے سے بہت تبدیلی آئے گی۔ پھر اتنے سارے میڈیا ادارے، اتنی ساری این جی اوز اور تنظیمیں جو صحافت کی حامی ہیں، آپ انہیں اس سب کو اسانج کے خلاف سیاسی استغاثے کے طور پر پیش کرتے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔
لیکن جولین اسانج کی وکیل اتفاق نہیں کرتی۔
اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی صحافی جو کسی دوسرے کے جرائم پر روشنی ڈالتا ہے، کسی غیر ملک کے بارے میں سچ باہر لاتا ہے، اسے تحویل میں لیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ صرف آپ کو تحویل میں ہی نہیں لیا جائے گا، بلکہ جب آپ امریکہ پہنچیں گے، جیسا کہ جولین اسانج کے معاملے میں کہا جا رہا ہے، تو آپ کو آئینی تحفظ کے حصول سے محروم رکھا جائے گا۔ یہ ایک خوفناک بات ہے۔
امریکہ کی نو منتخب نائب صدر کیملا ہیرس نے صدر ٹرمپ کی اس گفتگو کو طاقت کا غلط استعمال قرار دیا ہے، جس میں صدر کو ریاست جارجیا کے ایک اعلی عہدیدار سے گفتگو میں الیکشن کے نتائج بدلنے کی خاطر درکار ووٹ تلاش کرنے کے لیے کہتے سنا جا سکتا ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اس ریکارڈنگ کی تفصیلات شائع کی ہیں۔ پوری گفتگو میں جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ براڈ رافنسبرگر یہی موقف دہراتے ہیں کہ جارجیا میں بائیڈن کی فتح منصفانہ اور درست ہے۔ تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر۔
صدر ٹرمپ کا مواخذہ روسی اسکینڈل اور کووڈ کے دوران لاپرواہی۔ صدر ٹرمپ کی صدارت کئی مسائل کا شکار رہی ہے، لیکن کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایک امریکی صدر ملک کی ریاست کے ایک اعلیٰ حکام کو ووٹ تلاش کرنے کے لیے کہتے سنے جا سکتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے فون کال کے جو اقتصابات جاری کیے گئے ہیں، ان میں صدر ٹرمپ کو جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ پر دباؤ ڈالتے اور پھر انہیں اس کام کے لیے منانے کی کوشش کرتے سنا جا سکتا ہے۔
آپ ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن ایسا ہو رہا ہے اور آپ اسے ہونے دے رہے ہیں۔ دیکھیں، بات بالکل سیدھی سی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ 11,780 ووٹ تلاش کریں، کیونکہ ریاست میں کامیابی ہمیں ملی ہے۔
اس بات پر اعلیٰ عہدیدار کا جواب ہوتا ہے کہ جناب صدر، آپ کا جو دعویٰ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اعداد و شمار درست نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جیت ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ریپبلکن پارٹی میں بھی اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے سابق حزب اختلاف کے رہنما کا کہنا ہے کہ صدر کا یہ رویہ غیر جمہوری اور پارٹی نظریوں کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن سینیٹر ٹیڈ کروز کی صدارت میں 11 ریپبلکن سینیٹرز صدارتی انتخابات کے نتائج کو 6 جنوری کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔
ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر سچ کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کم از کم یہاں امریکی میڈیا میں تو ہرگز نہیں۔ سچ کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، یہ سب لبرل میڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ فون کال بالکل بکواس ہے، اور آپ اسے خود جا کر سنیں۔
صدر ٹرمپ کے جیت کے دعوے اور ہار ماننے سے انکار کرنا اصل نتیجے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اقتدار کی منتقلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ اب سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے کنٹرول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ جارجیا کا دورہ کر کے وہاں کے امیدواروں کی حمایت کریں جن کے انتخابات جنوری میں ہونے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو انتخابات میں شکست ہوئی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ٹرمپ کا موقف بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لاکھوں افراد ان کے حامی ہیں، اور صدارت چھوڑنے کے بعد بھی ان کے حامی رہیں گے۔ غزنفر حیدر، بی بی سی نیوز۔
تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی۔ پتہ ہے bbc.com/اردو۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے سینکڑوں خواتین انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے سابق عسکریت پسندوں کے ساتھ بھیائی گئی تھیں۔ 10 سال قبل انڈیا کی ریہیبلیٹیشن یا باز آبادکاری مہم کے تحت یہ خواتین اپنے کشمیری شوہروں اور بچوں کے ہمراہ وہاں بس گئی تھیں، لیکن انہیں سفری حقوق حاصل نہیں ہیں۔ بعض کی طلاق ہو گئی، جبکہ ایک خاتون نے خودکشی بھی کر لی۔ اب دیگر نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر انہیں سفری حقوق نہ دیے گئے تو وہ لائن آف کنٹرول کی طرف بال بچوں سمیت مارچ کریں گی۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے رہنے والے سابق عسکریت پسندوں کے ساتھ بیاہی گئیں پاکستانی خواتین خود کو بے وطن سمجھتی ہیں۔
ہم لوگوں کو یہاں کی مطلب نیشنلٹی تک نہیں دی جا رہی ہے۔ ہمارا یہی ایک التجا ہے گورنمنٹ کو کہ ہم لوگوں کی جو ہے نا اتنی جو ہے وہ عزت افزائی نہ کریں، آپ ہمیں واپس ہی بھیج دیں۔
شمالی کشمیر کے پٹن علاقے میں اپنے خاوند اور تین بچوں کے ساتھ رہنے والی طیبہ اعجاز پاکستان کے ایبٹ آباد کی رہنے والی ہیں۔ مسلم مزاحمت کا راستہ ترک کرنے والے کشمیریوں کے ساتھ شادی کرنے والی سینکڑوں پاکستانی خواتین میں طیبہ بھی ہیں، جنہوں نے سرحد پر دوربین سے اپنے والدین کو صرف ایک بار دیکھا تھا۔
میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کی، میں نے کہا میں یہاں پہ آ رہی ہوں تو آپ بھی دوسری سائڈ آ جائیے، میں آپ کو دیکھوں گی۔ تو یہاں کے جو سیکیورٹی فورسز تھی، میں نے ان کی بہت منتیں کی، میں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے جانے دو آپ پل کے اوپر، میں اپنے ماں باپ کو گلے لگانا چاہتی ہوں۔ وہ دور تھے تو مجھے کھینچ رہا تھا جیسے کوئی، کہ میرا دل کر رہا تھا میں پانی میں چھلانگ لگاؤں، میں ان کے پاس پہنچوں۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے۔
ان خواتین کی تعداد 300 سے زیادہ ہے اور ان میں سے کئی وفات پا چکی ہیں، جبکہ ایک خاتون نے خودکشی بھی کر لی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ بلدیاتی اداروں کے لیے ہونے والے حالیہ انتخابات میں ان میں سے دو خواتین نے حصہ بھی لیا، تاہم دونوں کے انتخابی نتائج التوا میں رکھے گئے ہیں۔
اپنی دونوں حکومتوں سے یہ اپیل کروں گی کہ ہم بیٹیوں پہ، ہم آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ہم پہ رحم کریں، ہمیں آنے جانے کے لیے سفری دستاویزات دیے جائیں۔
ان خواتین میں سے اکثر کا تعلق پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے ساتھ ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی نیوز، سری نگر۔
آج سے ابین میں اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/اردو دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔
WTOR 770 AM Youngstown, Toronto.
ہمارے مقامی کاروبار، جب ہمیں ان کی ضرورت پڑتی تو وہ ہر وقت حاضر ہوتے، کسی کے لیے تحفہ چاہیے ہوتا ان کے پاس موجود ہوتا، اپنی پسند کا کھانا کھانا ہو تو وہ گھر تک ڈیلیور کرتے، اور آج وہ مشکل سے دو چار ہیں۔ اب ہماری باری ہے ان کی خدمات کا صلہ دینے کی۔ خریداری مقامیوں سے کریں، آسانی اور سہولت کے ساتھ ڈیلیوری ان سے کروائیں، پک اپ اور ٹیک اوے ان سے لیں، اپنے مقامی کاروبار کو سپورٹ کریں۔
Ontario, yours to rediscover.
کہتے ہیں کہ مایا کو کھینچے مایا کر کر لمبے ہاتھ، ہیری سون دا میجسٹک مارگیجز کے ساتھ ریزیڈینشل کمرشل مارگیج ری فائنینسنگ آپ نے کرنی ہے، کسی قسم کی انویسٹمنٹ پراپرٹی لینی ہے، سارے بینکرز اور لینڈرز کے ساتھ ڈیپ تعلقات ہیں ان کے، آپ کو فائنینسنگ کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور چارجز بھی کوئی نہیں دینے پڑیں گے۔ ہیری سون جی بڑی کمال کی تگڑم لڑا سکتے ہیں، بس آپ کال کر لیجیے اور پیسے کا رینج ہو جائے گا۔ $228 سے $1,000 مہینہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ کال ہیری سون now 6472281000 228 1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
Asian Food Center 905-793-1338 آپ کے کچن کی تمام ضروریات ایک ہی چھت تلے، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، گروسریز اینڈ سٹیبلز، بریڈ ڈیری اینڈ ایگ، بیوریجز اینڈ کنفیکشنری، برانڈیڈ فوڈز، پرسنل کیئر اینڈ ہاؤس ہولڈ، سویٹس اینڈ سموساز۔ آرڈر ناؤ فار ان سٹور فری پک اپ 905-793-1338 ہوم ڈیلیوری از آلسو اویلیبل۔ ایشین فوڈ سینٹر 905-793-1338 ایشین فوڈ سینٹر۔
کر لینا گویا پھر رشتہ کرنا ہو، ہر کام سفر کو کال کرو، ہر کام سفر کو کال کرو۔
برسوں سے جانا پہچانا قابل اعتماد نام ریئل اسٹیٹ کی کسی بھی ضرورت کے لیے کال کیجیے 6478986245 6478986245 سٹی اسکیپ ریئل اسٹیٹ کی۔
کھانے کا انتظام تو بہت ہی زبردست ہے اور مینیو بھی کمال کا ہے، بنایا بھی کتنا لذیذ ہے۔
یہ سب کمال ہے کرنا، ہٹ کا دعوت ہو تو کچن بہت خوب کرتے ہیں، اور اگر ویسے باہر کھانا کھانے کا دل چاہے تو سمجھو ہر عمر کی پسند کرنا ہٹ پر موجود۔ اور ہاں ایک اور بات، اس کھانے کے بعد گارنٹی نو ہارٹ برن۔
کرن ہٹ کا مجھے بھی نمبر دیں، ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی مہمان آتا ہی رہتا ہے۔
کرنا ہٹ مسز ساگا میں، بس کال کر لیجیے 9054058383
کہیں مارگیج نہیں مل رہی، جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گی آسان۔ 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام، ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں۔ ری فائنینسنگ آپشنز، رینیول آپشنز، مارگیج ڈیفیکلٹیز، ڈاؤن پیمنٹ ایشوز، सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munabbar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munabbar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
Roasted chicken, world's best spicy chicken, Albag style. Best chicken sandwiches in GTA, 50% less greasy and oily. Roasted chicken is located at 1758 Lawrence Avenue East at Victoria Park. Delivery available with Uber, DoorDash, Skip the Dishes. Business opportunities available. For more information, call 647-748-3444. That is 647-748-3444.
Ayyo, who is the stager?
Complete home furniture and appliances, latest style, color, fabric, golden, ya phir silver, modern, traditional, contemporary furniture and decor. Complete home furniture and appliances. Must see, must visit a designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
कुछ नाम जुड़े हैं रिश्तों से, कुछ नामों में विश्वास जगा।
हमारे रियल्टर हैं असवर इमाम, जो अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं कि वो प्रॉपर्टीज को कैसे खरीदें और कैसे बेचें, और ये सब बगैर ये सोचे कि इसमें उनका मुनाफा क्या है। इसीलिए साल दर साल उनसे हमारा विश्वास और भरोसे का रिश्ता मजबूत होता गया। आज ही कॉल कीजिए 416-877-8333 या asfarimam.com पर जाइए। रॉयल लपेज फ्लावर सिटी रियल्टी के असवर इमाम।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Filmi Gaane.
सीमा हो ना जन्म का हो ब
बंधन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नई रीत चला कर दे ये रीत अमर कर दे नई रीत चला कर दे ये रीत अमर कर दे आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में पायल छनका थी तुम आ जाओ जीवन सांसें देकर अपने संगीत अमर कर दो संगीत अमर कर दो मेरा गीत अमर कर दो जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा सब जीता किए मुझसे मैं हर दम ही हारा तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दे शायद मेरी शादी का ख्याल शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है
पंछी अकेला देख मुझे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है ना तुम सपने देख रही हो खिली हुई धूप में तारे देख रही हो पर नहीं नहीं बाबा चाय नहीं पीना तौबा मेरी तौबा माफ कर देना
इन्हीं अदाओं पर तो
पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है पहले तो सब अच्छा लगता है सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है
इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है
अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है
शायद मेरी शादी का खाया दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है तुम्हें मेरी कसम आओगे ना
नहीं बिल्कुल नहीं तेरी कसम आऊंगा
दिलबर मेरे जब तक मुझे ऐसे ही चढ़ पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही चढ़ पाओगे पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में ओ दिल मचल जाएगा मेरे कब तक मुझे ऐसे
पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तमन्ना की आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
था एक भमरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की पंखड़ी में बंद था। कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ।
कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में
मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ।
मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज।
उठी शम्मा तो मचल कर परवाना आ गया, आग के दामन में अपने आप को लिपटा दिया। हमने पूछा दूसरे की आग में रखा है क्या।
कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा।
मोहब्बत है क्या थी?
Thank you.
दिन गुजरे जो हम मैं तो देखे मोड़ से एक मैं कश जा रहा था मैं से रिश्ता जोड़ के हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर बीता रहा हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर बीता रहा कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला अपनी धुन में बस यही गाता रहा मोहब्बत है क्या चीज हमको बता हमको बता
ये किसने शुरू की हमें भी सुना मोहब्बत है क्या चीज मोहब्बत है क्या चीज मोहब्बत है क्या चीज मोहब्बत है क्या
बस से ना डरे डरे बाहों में सिमट गए दिल से लिपट गए रे
तुझे तो आया मजा तुझे तो सुझी हंसी मेरी तो जान हंसी रे
तू जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के
बात उलझ जाए तो आज न बुझियो बात उलझ जाए तो आज न बुझियो बात जो सुझियो तो बात जो सुझियो खुद पे उलझ जाए
आज रपट जाए तो हमें न उठियो बादल से छम छम शराब बरसे बादल से छम छम शराब बरसे
सांवरी घटा से शोभा बरसे
बूंदों की बजी पायल घटा ने छेड़ी गजल ये रात गई मचल रे
दिलों के राह खुले फिजा में रंग खुले जवा दिल को पे मिले दे
होना था जो हुआ वही अब डरना क्या
आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो
हमें जो बचाइयो तो हमें जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो
Ha 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 ha